السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور تاک رات دیکھنے کی توفیق دی ہے، صحت عافیت کے ساتھ. آپ لوگ تیار ہیں آج عبادت کے لیے، اپنے مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہو. دیکھیے، ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو ہم گندے مندے کپڑوں کے ساتھ ان کا استقبال نہیں کرتے، بلکہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے، تیار ہو کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں. اور جتنے خاص مہمان ہوں، تیاری اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو ان مہمانوں کے لیے جو عام مہمان نہیں ہیں، جو زمین کی مخلوق نہیں ہیں، جو آسمانوں سے اترتے ہیں، جن سے زیادہ پاک کوئی اور نہیں، جو کسی گناہ میں کبھی ملوث نہیں ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، جو فرما بردار ہیں، جو بہت ہی معزز ہیں، وہ مہمان آنے والے ہیں. تو کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ پھر اس کی تیاری کتنی اچھی ہونی چاہیے. اور انہوں نے کوئی کھانا پینا نہیں ہے ہمارے گھروں میں کہ ہم کھانے زیادہ تیار کریں، انہوں نے ہماری عبادت کو دیکھنا ہے. جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ان کے آنے کا کیا مقصد ہوتا ہے، تو اب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے ان کو اذیت ہو. کیونکہ جیسے ہم اپنے کسی مہمان کے لیے نہیں چاہتے کہ اس کو ذرا سی بھی تکلیف ہو ہمارے گھر پہ، اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کو تکلیف دیتی ہیں. جیسے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پیاز لہسن وغیرہ کی بو جو ہوتی ہے، وہ فرشتے اس سے اذیت محسوس کرتے ہیں، گندگی سے، ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے، بدبو کو پسند نہیں کرتے. تو ہمارے کپڑوں سے ایسی سمیل نہیں آنی چاہیے کہ جن کپڑوں میں پکوڑے تلے وہی کپڑے پہن کے عبادت کے لیے بیٹھ گئے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے اسلاف ان راتوں میں خاص اہتمام کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے. تو آپ کو نئے کپڑے پہننے کو کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن کم از کم دھلے ہوئے کپڑے ہوں، صاف ستھرے کپڑے ہوں. اور اسی طرح امید ہے آپ نے چیک کر لیا ہوگا کہ آپ کے گھر پہ کوئی اسٹیچوز نہیں ہیں، کوئی پورٹریٹس نہیں ہیں، اور کتا تو نہیں ہو سکتا. تو تبھی آپ کی تیاری مکمل ہوگی اپنے مہمانوں کے لیے. ورنہ آپ سوچ لیں کہ ہم نے اپنے مہمانوں کی کیا قدر کی اگر ہم نے اپنے گھر میں وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو ان کو آنے سے مانے ہوں، یعنی وہ آ نہ سکیں. یہ بھی چیک کر لیں گے کہیں کوئی ایسا مجسمہ آپ نے کبھی خریدا ہو. جب کسی جگہ آپ سیر کے لیے گئے، ویکیشن پہ گئے، تو اکثر لوگ لے آتے ہیں، کرسٹلس کی بنی ہوئی ڈالفنز ہوتی ہیں یا کوئی چھوٹے چھوٹے مجسمے ہوتے ہیں، وہ لا کے اپنے ڈرائنگ رومز میں سجائے ہوتے ہیں، ایسی کوئی چیز تو نہیں؟ یا اپنی فیملی کی بڑی بڑی تصویریں دیواروں پہ لگائی ہوتی ہیں، یا اپنی سائڈ ٹیبل کے اوپر رکھی ہوتی ہیں، فریمز رکھے ہوتے ہیں جس میں تصویریں ہوتی ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو ایک دفعہ ضرور چیک کر لینا چاہیے. اور ایک چیز ضرور کیجیے گا کہ اس مہینے کے گزرنے سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ نیت ضرور کر لیں کہ اس کے بعد بھی میں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا. اور بہترین تو یہ ہے کہ جیسے قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق رمضان میں رہا ہے، تو اسی تعلق کو جاری رکھیں. بے شک کہ اتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ نہیں پڑھ سکیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ضرور سلسلہ جاری رہنا چاہیے. ایسا نہیں کہ بالکل ڈسکنیکٹ ہو جائے، رمضان گزرا اور کنیکشن ختم، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو نیت ضرور کر لیجئے کہ میں نے کیسے اپنے تعلق کو بڑھانا ہے. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ فرشتے ہماری رپورٹنگ اوپر جا کے کرتے ہیں کہ پچھلے سال یہ بندہ کیسا تھا اور اس سال کیسا ہے. وہ لاسٹ لیلۃ القدر میں ہمیں دیکھ کے گئے تھے، इस लैलतुल कदर पे जब वो आएंगे तो वो देखेंगे कि हमारी ईमानी हालत, ये नहीं कि हमारा पैसा बड़ा है कि नहीं, ये नहीं है कि हमारे कपड़े ज्यादा पहले से बेहतर हैं या नहीं, या हम ज्यादा पहले से हसीन लग रहे हैं या नहीं, उनको इससे कुछ ताल्लुक नहीं। हाँ, हमारी ईमानी हालत, हमारी इबादत, हमारी नेकी पहले से बढ़ी है या कम हुई है या उतनी है। अगर हम चाहते हैं कि फरिश्ते हमारे लिए दुआएं करें, वो पाक मखलूक हमारे लिए सारा साल दुआएं करती रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी ईमानी हालत पहले से बेहतर हो, ना कि जो पहले थी वो भी जाती रही। ये नहीं होना चाहिए कभी। चलो, अगर ज्यादा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया तो कम से कम एक स्टेप तो आगे बढ़े, कुछ ना कुछ तो फर्क आना चाहिए। तो इसलिए हम जो इतने हरीस होते हैं ना, हर एक को हम कहते हैं हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए। आप बताएं कि क्या आप नहीं चाहेंगे कि फरिश्ते आपके लिए, वो जो सिदरातुल मुंतहा के फरिश्ते हैं, वो जो आसमानों के फरिश्ते हैं, वो मेरे और आपके लिए दुआएं करें। और ये तभी मुमकिन है कि जब हमारी ईमानी हालत पहले से बेहतर हो गई हो। तो उसको बेहतर करने की कोशिश करनी है। अगर हम आज इस वक्त मिसाल के तौर पे स्टेप 3 पे हैं, तो अगले साल तक स्टेप 4 पे हमें होना चाहिए, उससे अगले साल स्टेप 5 पे हमें चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि 3 पे हैं तो अगले साल अल्लाह ना करे कि 2 पे आ जाएं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें खुद देखना है, और ये कोई जांच नहीं सकता, हम खुद ही जांच सकते हैं, और हमें खुद ही इरादे करने हैं, खुद ही अपने लिए स्टेप उठाना है। जिंदगी आपको मोहलत नहीं देगी, ये जो आपके काम है ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये आपको कभी फुर्सत नहीं देंगे कि अब मैं बिल्कुल फारिग हो गई, अब मैं बस अल्लाह अल्लाह करूंगी। ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा, ना तो दुनिया के झमेले खत्म होंगे, ना ये आपकी मसरूफियात कभी कम होंगी, आगे से आगे बढ़ती ही जाएंगी। ठीक है ना, सेहत पहले से ज्यादा अच्छी होती जाएगी, ना आप बहुत ज्यादा पहले से भी ज्यादा जवान होते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हर गुजरता वक्त इंसान कमजोरी की तरफ जा रहा होता है, हर गुजरता वक्त इंसान की हिम्मत कम हो रही होती है। तो हमें फैसले करने हैं कुछ, और इसके लिए ये वक्त बेहतरीन वक्त है, और ये रातें बेहतरीन रातें हैं कि हम अपनी ईमानी हालत का जायजा लें और अपने लिए कुछ फ्यूचर प्लानिंग करें। दिस इज अ टाइम ऑफ प्लानिंग कि मैंने क्या करना है, इतने पे ही रहना है, आप मुतमईन हैं या आगे बढ़ना है। तो कोशिश कीजिए, इसकी आरजू रखिए कि मुझे अल्लाह ताला का कुर्ब चाहिए, ये रमजान के रमजान ना हो, ऐ अल्लाह मुझे अपना कुर्ब दे दे, और ऐ अल्लाह मुझे अपना बना ले, थक नहीं गए अभी तक दुनिया की गुलामी कर करके, अब अल्लाह की गुलामी करके भी देखें, थक नहीं गए अभी दुनिया के पीछे भाग भाग के, अब अल्लाह की तरफ भाग के भी देखें, आपको मिलेगा क्या ये आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये फैसले करने की रातें हैं, अल्लाह ताला ने तो फैसले फरिश्तों के हवाले कर देने हैं इन रातों में, लेकिन हमारे लिए भी है, हम अपने लिए क्या फैसला करते हैं। खुदा के लिए, अपने लिए खैर के फैसले करिए। अल्लाह ताला ने फुर्सत दी हुई इन रातों में कि हम अपने बारे में भी सोच सकें, वरना यकीन करें हमें पूरा साल तो अपना ख्याल भी नहीं आता, कभी किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, कभी किसी के, हमारे काम ही ख़त्म नहीं होते, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम कुछ सोचें बैठ के। तो ये रातें हमें मिली हैं कि हम अपने ऊपर फोकस कर सकें, अपनी ज़ात पे अपने लिए टाइम दे सकें कि सोचें मैं कहाँ खड़ी हुई हूँ, और मुझे अल्लाह ताला के पास उसकी मुलाकात करने से पहले किस जगह पे दिल चाहता है कि मैं खड़ी हूँ क्या। तो इसके लिए इरादा भी करें, नियत भी करें, अल्लाह ताला से तौफीक भी मांगे, और एक कदम भी बढ़ा लें अल्लाह की तरफ। अल्लाह ताला हम सब से कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमें कुरान करीम का साथ अता फरमाए, इस दुनिया में भी, कब्र में भी, और कयामत के दिन इसको हमारा सिफारशी बना दे। कोशिश करिए कि आप हर रात में सदका ज़रूर करें, चाहे थोड़ा सा करें लेकिन सदका ज़रूर निकालिए। और ख़ास तौर पे अब जैसे हम रमज़ान के अख्ताम की तरफ को जा रहे हैं, तो भूलिएगा नहीं कि हम सबको फितराना अदा करना, फितराना जिसको सदका फितर भी कहते हैं, ज़कातुल फितर भी कहते हैं, ये वो सदका है जो ईद से पहले पहले हर मुसलमान को अदा करना चाहिए। तो इसकी अभी से प्लानिंग कर लें कि हमने सदका फितर देना है, कहाँ देना है, और अगर आपने कहीं दूर भी जाना है तो इतना कम से कम होना चाहिए कि इतना टाइम आपके पास हो कि आपका जो सदका फितर वहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है, ईद तक वहाँ पहुँचा देना चाहिए आपको। और ये याद रखिए कि सदका फितर घर के हर फर्द पे लाजिम है, चाहे वो बच्चा है या बूढ़ा है। और इसकी हिकमत क्या है? एक तो ये है कि मसाकीन की मदद हो जाए, दूसरे ये कि हमारे जो रोज़ों में कमियां कोताहियां रह गई हैं ना, इनका कफारा हो जाए। तीसरे ये कि ये जिस्म की ज़कात है, समझ लें कि आपने अपने जिस्म की ज़कात निकाल दी। चौथी बात ये कि रोज़े मुकम्मल हो रहे हैं तो अल्लाह ताला के शुक्र के तौर पे हम ये सदका करते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वाजिब करार दिया, फ़र्ज़ करार दिया। बाज़ उलमा वाजिब कहते हैं, बाज़ फ़र्ज़ कहते हैं, और ये हर एक पे देना ज़रूरी, यानी चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे गुलाम है, चाहे आज़ाद है, अमीर है या गरीब है, फकीर है या मालदार है, बड़ा है या छोटा है, इवन न्यू बॉर्न बच्चा भी है, उसकी तरफ से भी अदा करना। जो फकीर भी है ना, वो दूसरों से सदका लेकर अपनी तरफ से सदका करे, और मालदार लोग उसकी मदद करें ये सदका फितर देने में। तो ये कितना है आप अपनी मस्जिद में फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे गंदम और आटे की उसमें सूरत में दें तो 2.5 किलो तक बनता है एक बंदे का। तो ईद की नमाज से पहले अगर आपने इसको ना अदा किया तो ये आम सदका हो जाएगा, फिर फितराना नहीं होगा। तो इसलिए उससे पहले पहले देना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप रमज़ान के शुरू में ही दे दें या मिड में दे दें, लेकिन रमज़ान के यानी ख़त्म की तरफ जब जा रहा है तो उस वक़्त, अब जैसे 3-4 दिन रह गए हों तो अब आप दे सकते हैं, तो इसको भूलना नहीं है। और वैसे भी इन रातों में ज़रूर सदका कीजिए। अब सदका करना बहुत आसान है, आप अपने फ़ोन के ज़रिए भी कर सकते हैं किसी जगह भी सदका, और किसी जगह पहुंचा सकते हैं। तो लेकिन कोशिश करें कि इन रातों में आप ये करें। ये रातें जब आती हैं तो अक्सर लोग दो गलतियां करते हैं जिनकी निशानदेही मैं आज करना चाहती हूँ। एक तो ये कि मगरिब की नमाज को बहुत डिले कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो ये थी कि खजूर या पानी के साथ रोज़ा इफ्तार करके और फौरन नमाज पढ़ते थे, क्योंकि मगरिब की नमाज का टाइम बहुत कम होता है। हम जब इन रातों को स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि जब आधी रात होगी तब हमने कुछ इबादत शुरू करनी है, हालांकि मगरिब से ही इसका टाइम शुरू हो जाता है। और वैसे भी रमज़ान में सबसे जिस नमाज को हम डिले करते हैं वो मगरिब है, जबकि इसका टाइम सबसे कम है। तो हम खाने पीने बैठते हैं तो फिर लंबा टाइम उसमें लगाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठ के हर एक वुजू करता है, फिर अगर जमात से पढ़नी है तो कभी कोई वुजू करने गया हुआ है, कभी किसी का इंतज़ार हो रहा है। और अल्लाह ना करे कि इसमें बाज़ लोगों की मगरिब की नमाज भी कज़ा हो जाती है, क्योंकि मगरिब की नमाज का टाइम सिर्फ उतना है कि जब तक सुर्खी आसमान पे रहती है, तो सुर्खी ख़त्म हो गई तो नमाज का वक्त भी ख़त्म हो गया, और हर एक इलाके के मुताबिक ये डिफरेंट है। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। दूसरी गलती एक ये होती है कि औरतें जब तरावी के लिए जाती हैं अगर मसाजिद में, तो पूरी बन सवर के तैयार होके जाती हैं, जबकि ये रातें तो इबादत की हैं। खुदारा इनमें तो गुनाहों से बच जाओ, इनमें तो अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दो। इन रातों में भी अगर इतनी जुर्रत है कि अल्लाह की नाफरमानी पे तुले में और किसी बात को गलत समझना ही नहीं और किसी चीज़ को बुरा समझना ही नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं? अब पूरे बन समर के जाने से बेहतर तो ये है कि फिर हम घर में ही क़याम कर लें ना, मस्जिद जाके करें, क्योंकि औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है मस्जिद जाना। अगर आपने जाना है तो अल्लाह ताला की शरीयत के मुताबिक जिस तरह औरत को घर से निकलना चाहिए उस तरह से निकलें। तीसरी चीज़ हम ये करते हैं कि जब ये रातें ख़त्म होने लगती हैं यानी सहरी का वक्त हो जाता है, तो अब हमने बस सारी रात इबादत कर ली, अब सहरी का वक्त तो सहरी बनाएं, अब उसमें हम सारा जिक्र विक्र छोड़ के और सहरी बनाने में लग जाते हैं। या तो बिल्कुल खामोश है, नींद बहुत आ रही है, या फिर इधर उधर बातें कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें लगता है कि रात तो ख़त्म हो गई, हालांकि ये हत्ता मतला अल फजर मत फजर तक है ये रात। और ख़ास तौर पे वो टाइम जिस वक्त हम सहरी बना रहे होते हैं, वो इस्तिग़फ़ार का टाइम है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की तारीफ बयान फरमाई कुरान में जो सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो उस वक्त तो इस्तग़फ़िरुल्लाह इस्तग़फ़िरुल्लाह कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो सिर्फ इस्तग़फ़िरुल्लाह ही कहते रहें, ये आखिरी अशरे की दुआ ही मांगते जाएं, मगर खामोश क्यों खड़े में कि खामोशी से पका रहे हैं, खामोशी से सब कर रहे हैं, ये ना करें। वो वक्त समझें कि ये टाइम खास तौर पे माफी का टाइम है। तो ये जो आखिरी अशरे की दुआ भी है ना, ये भी कोई लिप सर्विस नहीं है कि बस हम इस तरह इतनी दफा 100 दफा कर लिए, मैंने 10 दफा कर लिए, नहीं, बल्कि ये दिल से निकलनी चाहिए, क्योंकि मुझे और आपको वाकई मगफिरत चाहिए, अपने गुनाहों पे निदामत जरूरी है। कि अगर ये एहसास होना चाहिए कि अगर मैं इन गुनाहों के साथ अपने अल्लाह के सामने खड़ी हो गई तो मेरा क्या बनेगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अल्लाह ताला को, अगर ये मेरे अमालनामे में बाकी रह गए मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। और ये याद रखें, ये कोई चॉइस नहीं है, ये कोई इजी सा मामला ना इसको समझें कि ठीक है माफी हो भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर ना भी हुई तो कोई मसला ही नहीं। जैसे हम चलो ठीक है ये दुआएं पढ़ ली क्योंकि ये तो आपसे सलम ने फरमाया ना, इन रातों में ये दुआ मांगनी चाहिए तो इसलिए मैं मांग रही हूँ, नहीं इसलिए मैं मांग रही हूँ कि मुझे माफी चाहिए, मुझे बख्शिश चाहिए, ये मेरा बहुत बड़ा मसला है कि मुझे बख्शिश चाहिए, और अगर मेरी इन रातों में ना बख्शिश हुई तो कोई पूरे साल में ऐसा टाइम नहीं है जो इतनी बड़ी रहमत का है। इसका मतलब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि कोई इन रातों में भी महरूम हो गया तो उसका तो फिर कोई ठिकाना नहीं, फिर और इससे ज्यादा बढ़ के कौन सा टाइम आएगा जिसपे अल्लाह की रहमत इतनी उतर रही होगी, फिर और कौन सा वक्त होगा कि उसको बख्शिश मिल सकती होगी कि अगर इन रातों में भी ना मिली। इसीलिए तो आपसे सरम ने फरमाया जो इस रात की खैर से महरूम होगा सारी खैर से महरूम होगी, इस रात में भी ना जो अपनी बख्शिश करवा सका तो उसको बाद में तो क्या मिलनी है फिर बख्शिश, क्योंकि इस वक्त पीक पे अल्लाह ताला की रहमत। तो इसको अपना मसला बनाएं कि मैंने इन रातों में मेरी बख्शिश हो जानी चाहिए, इसको हम बड़ा मसला नहीं समझते। जितना बड़ा जॉब चली जाए तो किसी के लिए कितना बड़ा मसला समझा जाता है ना इसके इसको, या किसी को डॉक्टर कह दे कि तुम्हें कैंसर है तो इसको कितना बड़ा मसला समझा जाता है, या किसी के बच्चे को उसकी पसंद की यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला तो कितना बड़ा मसला इसको समझा जाता है, या कोई औरत किसी को पता चल जाए कि उसका शौहर किसी और औरत के चक्कर में है तब तो कियामत ही आ जाती है, वो कितना बड़ा मसला समझा जाता है। प्यारी बहनों, जितने लोग सुन रहे हैं, ये मसले कुछ मसले नहीं जितना बड़ा ये मसला है कि अगर मेरी बख्शिश ना हुई तो क्या होगा। ये सारे मसाइल ये कितनी, ये तो ऐसे हैं कि किसी के ऊपर कयामत गिर पड़ती है अगर अगर किसी को इनमें से कोई चीज का सामना करना पड़ जाए, कि जो मैंने अभी आपके सामने मेंशन किए हैं, या और कोई ऐसी नागहानी, कोई ऐसी कोई खुदा ना खास कोई खबर उसको मिल जाए तो उसके ऊपर ऐसे लगता है कयामत टूट गई। लेकिन जितने दुनिया के ये मसाइल है ना सारे जमा कर लिए जाएं, जिन पे हम इतना रोना पीटना डाल लेते हैं या जिन हमारे लिए बहुत बड़े हैं, वो सारे जमा कर लिए जाएं तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा ये मसला है कि अगर हमारी बख्शिश ना हुई तो क्या होगा। इसीलिए हमें जो माफी मांगनी है वो सिर्फ रटे रटाए अल्फाज मुंह से अदा कर देना ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि जैसे मेरी जिंदगी और मौत का मसला है, ये सोच होनी चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर मेरी बख्शिश ना हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ये जो हमारे गुनाह है ना ये किसी कैंसर की न्यूज़ से ज्यादा बड़े हैं, ये जो हमारे गुनाह है ना ये शौहर की बेवफाई से ज्यादा बढ़ के हैं, ये जो हमारे गुनाह है ना ये तो जहन्नुम के गड़े तक ले जाने वाले हैं, और जहन्नुम से बढ़ के कोई बड़ी मुसीबत नहीं है, वो सबसे बड़ी मुसीबत है। उसके आगे हार मुसीबत हल्की है। फिर क्यों ऐसा है कि दुनिया के ये सारे मसाइल हमारे लिए बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन बख्शीश ना होना या हो जाना हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं लगता। इसलिए हम सोए भी पड़े रहते हैं, इसलिए हमें ज्यादा परवाह भी नहीं होती, इसलिए हमारे आंसू भी नहीं निकलते, हमें रोना ही नहीं आता अपने गुनाहों पे, क्योंकि वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ना हमारे लिए। हाँ, ये रोना आता है अगर ये पता चल जाए कि बॉस ने फायर कर दिया, कल से जॉब पे मत आना, तो बहुत रोना आता है। हाँ, किसी बच्चे का कोई ऐसा मसला हो गया तो बहुत रोना आता है, मेरे गुनाह मुझे क्यों नहीं रुलाते, क्या ये मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि जहन्नुम आगे जल रही है और मेरे गुनाह मुझे जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं, इससे मुझे डर नहीं लगता। मैं इन चीजों से ज्यादा डरती हूं, ये जो दुनिया की छोटी छोटी मसले मसाइल है, मुझे जहन्नुम से डर नहीं लगता, हालांकि उलट होना चाहिए। जहन्नुम के तो अंदेशे से भी कि इतनी परसेंट भी कहीं टाइनी माइन्यूट सा जरा सा भी चांस अगर मेरा है कि मैं जहन्नुम में जा सकती हूं, तो इससे भी मेरे रूप काम जानी चाहिए, मुझे ये तड़प होनी चाहिए कि मुझे हर कीमत पर हर सूरत अपने गुनाह बख्शवाने हैं। जैसे कि सालबा को तड़प लग गई थी, जानते हैं आप सालबा की स्टोरी को? आज मैं आपको सालबा की स्टोरी सुनाती हूँ। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम रसां थे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मैसेज भेजना होता था ना, तो इनके हाथ भेजते थे कि फलां जगह या फलां बंदे को मेरा ये पैगाम ले जाके दो। ये यंग लड़के थे, कोई यानी टीन एजर, 13 से 16 साल तक की उम्र के दरमियान की उम्र थी इनकी। तो एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक पैगाम दे के रवाना किया कि फलां तक दे आओ। तो जब ये निकलते हैं तो बाहर बहुत सख्त आंधी की तरह की हवा चल रही होती है, तेज हवा चल रही होती है। ये घर के करीब से गुजरते हैं, और उन दिनों घरों के दरवाजे नहीं होते थे, पर्दे लटके होते थे सिर्फ, और घर भी बहुत छोटे छोटे होते थे, कोई उनमें बाथरूम और अलग अलग बेडरूम्स तो नहीं बने होते थे। जब ये एक घर के करीब से गुजरे तो हवा इतनी तेज चली कि उस घर का जो पर्दा था ना वो उठ गया, और अंदर इनको एक औरत नजर आई जो नहा रही थी। अब जाहिर है नहा रही है तो उसका जिस्म नजर आया होगा, नंगी थी। जूं ही उस पे नजर पड़ी उन्होंने फौरन नजर हटा ली और रोने लग गए और दौड़ गए वहां से, दौड़ते गए दौड़ते गए, हत्ता के मदीना के बाहर निकल गए पहाड़ों में। क्यों? एक टीनेजर लड़का है, आप उनकी सोच देखें कि मेरी नजर एक हराम जगह पे पड़ गई है, और अब अल्लाह ताला तो मुझसे नाराज हो गया होगा और वो मुझे जहन्नुम में डाल देगा। अब सोच देखें कि एक गलती जो जो मतलब जानबूझ के नजर नहीं डाली, एक गलती से नजर पड़ गई है, तो इनका ये हाल है कि शिद्दते खौफ से भाग निकले हैं। अब इनका यह हाल था कि रो रहे हैं, रो रहे हैं कि अब मेरी शामत है, क्योंकि अब अल्लाह ताला मेरे नबी के ऊपर कोई वही उतार देगा, आयतें उतर आएंगी, मेरे नबी को पता चल जाएगा, और मैं आपका सामना कैसे करूंगा। तो इस वजह से बस भाग गए, पहाड़ों में चले गए। कई दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा रहे थे, तो उसके बाद आपने साहबा से पूछा कि सालबा कहाँ है, वो इतने दिन से नजर नहीं आया। अब देखिए ना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कितने ज्यादा एहसास करने वाले थे कि एक एक बंदे के बारे में पता रखते थे, वरना एक लड़का है, छोटा लड़का है, नहीं भी आया तो क्या फर्क पड़। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एक बंदे का एहसास था। तो आपने जब पूछा, साहबा ने फरमाया कि हमें तो खुद भी इसका नहीं पता, हमने भी नहीं उसको कई दिन से देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को और सलमान फारसी को फरमाया कि जाओ सालबा को तलाश करके लाओ। वो निकलते हैं, ढूंढते हैं ढूंढते हैं, मदीना से बाहर चले जाते हैं। वहां उनको एक चरवाहा नजर आता है जो अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था। वो उसके पास जाते हैं कि इससे चलो हम कुछ दूध लेके पी लेते हैं। चरवाहा उमर रज़ी अल्लाह तआला से पूछता है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, यानी मदीना से बाहर तो अब आपका आपका क्या काम है मतलब यहाँ पे आने का। तो उमर फरमाते हैं बस हम एक लड़के की तलाश में निकले हैं, लेकिन तुम्हें तो ज़ाहिर है उसका नहीं पता होगा, तो बस हम उस लड़के को तलाश कर रहे हैं। चरवाहा बोला आप उस लड़के की बात तो नहीं कर रहे जो आंसुओं से भरा हुआ दूध का प्याला पीता है। उमर कहते हैं तुम क्या कह रहे हो। चरवाहा बोला हाँ, हर रोज मगरिब के वक्त एक लड़का है जो इस पहाड़ों से उतर के आता है और मुझसे दूध का प्याला मांगता है, लेकिन जब मैं उसको देता हूं वो इतना रो रहा होता है, इतना रो रहा होता है कि दूध के प्याले में उसके आंसू मुसलसल बह बह के गिर रहे होते हैं, और वो इसी ही तरह दूध पीता रहता है। अगर आप कुछ देर ठहरे तो मगरिब होने वाली है, आप उसको देख लेंगे। अब उमर और सलमान फारसी एक पत्थर के पीछे छुप गए कि देखें क्या होता है। उधर मगरिब का वक्त करीब होता है, एक लड़का पहाड़ों से उतरता है और वो रो रहा है और रो रहा है, और वो देखते हैं कि ये तो सालबा ही है। वो इसी तरह चरवाहे से दूध मांगता है और आंसुओं की झड़ियां लगी हुई हैं, इतने आंसू हैं कि रुकने का नाम ही नहीं लेते। जैसे बाज दफा हम बहुत दुखी होते हैं ना, तो बस कुछ भी काम कर रहे हैं तो आंसू वैसे ही गिरते रहते। तो वो लड़का प्याला लेता है मगर रोना इतना ज्यादा है कि प्याला हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है। उमर ये देख रहे हैं, वो बाहर निकलते हैं। सालवा ने जब उमर को देखा तो एकदम चीख मारी, नहीं 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 आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उमर बोले हम तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें बुलाया है। सालवा कहते हैं नहीं 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 क्या मेरे बारे में कोई आयात उतर आई है, क्या आपने फरमाया कि मैं जहन्नुम में जाऊंगा। अल्लाहु अकबर, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। उमर कहते हैं कि जो ये तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। उमर ने सालबा को उठाया और मदीना की तरफ चल दिया। मदीना पहुंच के उमर ने सालबा को उनके घर पे छोड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके इत्तला दी कि इस तरह हम उसको घर पे छोड़ आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूं ही ये पता चला फौरन उसी वक्त उठे, सालबा के घर की तरफ चल दिए। जब आप सालबा के घर में दाखिल हुए तो आगे देखते हैं सालबा बैठे हैं और रो रहे हैं। अल्लाह हू अकबर। सालबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं या रसूल, मैं आपका सामना नहीं कर सकता, मुझे हक नहीं है कि मैं आपकी तरफ देखूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल आलमीन थे, फरमाया कुछ नहीं हुआ सालबा मत फिक्र करो। सालबा कहते नहीं नहीं या रसूल, क्या मेरे बारे में कोई आयात उतर आई, क्या मैं जहन्नुम में जलूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से फरमाया नहीं सालबा, कोई आयात नहीं उतरी, आओ मेरे पास। और हालांकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सके बेटे नहीं है, एक उम्मती है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसास देखे फरमाया मेरे पास आओ, इधर आओ, मेरी गोद में अपना सर रखो, लेट जाओ। सालबा आगे से कहते या रसूल अल्लाह, ये सारे इस काबिल नहीं है कि मैं आपकी गोद में रखूं, ये गुनाहों से भरा हुआ है, ये गंदगियों से भरा हुआ है। और सोचें ये एक लड़के की बात है, एक बच्चे की। आपने फरमाया अच्छा कोई बात नहीं, चलो तुम ऐसे ही सर अपना मेरी गोद में रखो। सालबा आए और आपकी गोद में अपना सर रख दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबान शफीक बाप की तरह जैसे अपनी औलाद के सर पे आप हाथ फेरते हैं, इस तरह सर पे हाथ फेरने लगे। फरमाते हैं सालबा बताओ तुम क्या चाहते हो। तो सालबा रोने लगे, कहते हैं या रसूल्ला मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मुझे पता चल जाए कि मेरे अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया उस पे जो मैंने किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सालबा फिक्र ना करो, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये बात सुननी थी कि सालबा का सारा जिस्म बुरी तरह कांपने लगा। आपने फरमाया, सालबा क्या हुआ तुम्हें? बोले, या रसूल, मुझे लग रहा है कि चूंटियां मेरी हड्डियों के अंदर चल रही हैं। आपने फरमाया, सालबा कलमा पढ़ो। उस वक्त उनको मौत आ रही थी और उनका सार आप सल्लम की गोद में था। कुछ देर गुजरी और सालबा अल्लाह को प्यारे होकर, सोचे एक बच्चा जिसने गलती से एक जगह पे नजर डाल दी, तो उन्होंने ये सोच लिया कि मैं बर्बाद हो गया, कि उस पे कितना पछतावा, कितनी निदामत, कितने आंसू, इतना रोना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफन दफन किया और उनका जनाजा पढ़ा। और जब उनका जनाजा लेके जा रहे थे, आप देखिए मेरा रब ना कितना कदरदान है, कितना मेहरबान है, वो वाकई अरहम और राहिमीन है, वो वाकई रहमान और रहीम है। तो जब जनाजा लेकर जा रहे थे तो सहाबा कराम देखते हैं कि बावजूद इसके कि जगह खुली है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैरों की उंगलियों के बल पे चल रहे हैं। उमर ने पूछा, या रसूलल्लाह इतनी जगह है, आप क्यों ऐसे चल रहे? आपने फरमाया, उमर, सालबा के जनाजे में इतने फरिश्ते हैं कि मेरे पास पैर रखने की भी जगह नहीं। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। इस वाक्य से आप सोचें कि मेरे और आपके गुनाह कितने हैं, लेकिन क्या कभी हमारे गुनाह भी हमें इस तरह सताते हैं? क्या हमें भी अपने गुनाहों पर इतनी नदामत, इतनी पशेमानी, इतना दुख होता है? क्या कभी हम उनके ऊपर ऐसे आंसू बहाते हैं? कितने ही गुनाह ऐसे हैं जिनको हम भूल चुके हैं, कितने गुनाह ऐसे हैं जिनको हमने इतना मामूली समझा है कि उन पर आज तक एक आंसू भी नहीं बहाया, और कितने गुनाह ऐसे हैं जिन पे हमें कभी कोई पछतावा भी नहीं हुआ, और कितने गुनाह ऐसे हैं जिनको हम बहुत अच्छा समझ के करते रहे, और कितने गुनाह ऐसे हैं जो हमारी आदत बन चुके हैं और हमें कोई फिक्र नहीं उनकी, और कितने गुनाह ऐसे हैं जिनको हम करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और कल भी करने का इरादा है, और छोड़ने का सोचते तक नहीं। और ये वो लोग हैं, ये एक गुनाह पे भी इनका पछतावा कितना है। आज हम जब कयाम करेंगे तो अपने गुनाहों को सोचेंगे और उनके ऊपर अल्लाह ताला से बख्शिश मांगेंगे। और जो लोग नवाफिल नहीं पढ़ सके, वो बैठ के इस अशरे की दुआ को इस तरह मांगे कि वाकई ही अल्लाह ताला के आगे आंसू बहाएं, अपने गुनाहों को भी याद करें और दिल से इस दुआ को मांगे।